ये तुम हो, आंखें बंद किए हुए बारिश के नीचे। कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम भी करोगे। कभी भी खुद को इस तरह नहीं देखा होगा। नहीं मालूम कैसे वजाहत की जाए, या उन लोगों की मानें जो घंटों डूबते हुए सूरज की किरणों को हैरत से देखते हैं। शायद समझ रहे हो कि मैं कैसे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, और शायद न भी समझ रहे हो। बहरहाल तुम भी उन्हीं की तरह होना चाहते हो। वो लोग जो सर्दियों में लड़ते हैं, जो टपकते हुए पानी के कतरों को जो उनके कपड़ों के नीचे से गुजरता है महसूस करते हैं, मिट्टी को महसूस करते हैं कि जो मुश्किल से उनके पैरों के नीचे से उभरती है, और बारिश की आवाज़ जो पत्तों को चोट पहुंचाती है, और वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। और तुम हो, कौन सोच सकता था, तुम। तुम्हारा अंदर आना जरूरी नहीं, जाओ बैठो, जो भी होगा मैं खुद में बता दूंगा। जाओ बैठो।
आखिर मैं भी तो,
जो भी होगा तुम्हें बता दूंगा, बैठो।
अफसोस के बढ़ चुका है, हाइपोफिजिट के हुदूद तक पहुंच चुका है। ठीक इसी जगह हाइपोफिजिट के हुदूद के नीचे, और तकरीबन पिंग पोंग की गेंद से कुछ छोटा है। बीवी बच्चे हैं, कोई करीबी रिश्तेदार?
जो भी है मुझसे कहें।
अफसोस के दवाओं को कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ है। तुम्हारे नुखा के मायका टेस्ट भी ट्यूमर की नाजुक सूरत हाल को ही साबित करता है। कोर्टिजन दवाओं का इस्तेमाल भी मुसलसल जारी रखो। दिमाग में वर्म को कम करने के लिए एक एंटी तशन्नुज दवा भी लिख रहा हूं। तशन्नुज का दौरा पड़ने का भी इम्कान है, और इससे तुम्हारे बदन का एक हिस्सा मफलूज भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ पिछले एक महीने में तुम पर अटैक हुआ है?
अटैक नहीं, बाज़ औक़ात मेरा दाहिना हाथ और पैर बेहिस हो जाता है।
गुस्सा करने से अटैक का खतरा बढ़ जाता है, कोशिश करो कि गुस्सा न करो।
बिरोने मुल्क ठीक होने का इम्कान
है? हाइपोफिज तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि ट्यूमर की नसों को पूरी तरह साफ करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यहाँ और यूरोप में कोई फर्क नहीं है, महारत वसाइल और मशीनों की बात नहीं है, बल्कि करीबी नसों को अलग करते वक्त खुरेजी और मौत का इम्कान 100% तक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मौजूदे पर यकीन है?
पहले रखता था,
और अब?
अब तो किसी चीज पर यकीन नहीं है।
कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ कोशिश करो कि फाइबरदार गजाएं खाते रहो, ठीक है?
डॉक्टर की बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैं पत्थर की तरह हो गया था, कोई एहसास नहीं था, बेख्तियार आंसू निकल रहा था। हुसैन के मरने के बाद किसी चीज के बारे में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी, न खुशी न गम, सिर्फ खुश होने या गमगीन होने का नाटक करता हूँ। जब कमरे से बाहर निकलता हूँ तो किसी के बारे में कोई एहसास मेरे चेहरे पर नहीं होता।
Thank you.
अली रजा मेरी आंखों में देखो, बताओ सच कह रहे हो ना?
मैंने सच कहा है।
यानी तुम्हारे सर का ट्यूमर ठीक हो जाएगा? यानी तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल?
हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अगर दवाएं खाता रहूं, एक्सरे भी कराता रहूं, तो 2 महीने में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
खुदा का शुक्र है। तो फिर हमारा जश्न वाकई जश्न होगा।
मौजूद होती है कि हर मिनट में कैंसर के हजारों सेल्स पैदा करे। सेल्स मुसलसल अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं और वो भी इस तरह के बदन का दिफाई निजाम उनकी तशखीस नहीं कर पाता। अपने दिमाग में सेल्स के नमू को महसूस करता हूं। आज रात हमारी शादी की सालगिरह है, हमारी शादी की आखिरी सालगिरह। बरसों से तुम यही कर रही हो, अभी तक थकी नहीं?
अगर तुम अम्मी कहोगे तो तीन वर्षों से मैं झेल रहा हूं। काफी नहीं है? मुझसे इंतकाम ले रहे हो? लो और लो। तो फिर तेरा रहमान और रहीम होना कहां गया? कहां गया? किसी का गिला शिकवा सुनने की ताकत नहीं है ना, लेकिन मुझे है, मुझे शिकवा है। मैं नाराज हूं, मैं बुरा लगता हूं, लेकिन मरियम बेचारी का क्या गुनाह है?
आज मुहर्रम की पहली है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें फिर इस लिबास में देखूं, हम फिर अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह से एक
खैर। ये तो हर साल का काम है, रात में भी तुमसे कहा था। ठीक है,
रात मैंने तुम्हारा जवाब नहीं दिया क्योंकि नहीं चाहती थी तुम्हें नाराज करूं। याद है ना कि निकाह के वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी नाराज नहीं होगे, अगर नाराज हुए भी तो सिर्फ 24 घंटों के लिए। तुमने सच कहा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 वर्षों तक अल्लाह ताला, इमाम हुसैन और पूरी दुनिया से नाराज हो जाओगे, और ऐसी चीज के लिए जिसके जिम्मेदार तुम खुद हो।
3 वर्षों से हम इस सिलसिले में बहस कर रहे हैं और आखिर में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते।
इस साल फर्क है, 7-8 महीने डॉक्टरों के पास जाने के बाद अब तुम्हारी समझ में आया है कि तुम्हारे सर का ट्यूमर ठीक हो जाएगा। कल चांद रात थी अली रजा, अगर डॉक्टर तुमसे कहता कि 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे तो तुम क्या करते? फिर भी अपनी नज़र पूरी ना करते? ये मेरी अम्मी ने दी है, उन्हें बहुत अजीज है। ये मेरे बाबा की यादगार है। जानमाज, सिजदे का, अंगूठी और तस्बीह सब करबला की है, कम से कम 40 साल पहले की है।
चलो, अब तुम्हारी और मरियम की बारी है। अल्लाह से वही मांगो जो तुम चाहते हो।
अरे खालू जान, अल्लाह के पास इतने काम है कि हमारे लिए वक्त ही नहीं है। 3 साल से दरवाजा खटखटा रहा हूँ जबकि इतनी नजरों ने आज भी कर डाली।
लेकिन अली रजा, जोरे आशूर की नजर की बात ही और है।
अगर तुम्हें जवाब नहीं मिलता तो छोड़ दो और अपनी जिंदगी में लग जाओ, यानी बच्चा किस्मत में नहीं है।
मेरी और मरियम की शादी को 3 साल बीत चुके थे और हम अभी तक साहबे औलाद नहीं हुए थे। पूरे 1 साल तक हम दवा इलाज करते रहे, 1 साल बाद हम थक गए, लेकिन हमने और मरियम ने किसी से नहीं कहा कि किसके अंदर कमी है, अपने घर वालों से भी नहीं कहा।
हाजी साहब इनकी चीज भी तो दें। जानेमन जानम, देखो बाबा के पास कौन आया है। तुझे नादर रो क्यों रहे हो?
भूखा है ना, ये खाना मांग रहा है।
पेटू पेटू
एक साल बाद हमारे यहाँ एक बेटा हुआ, हमने उसका नाम हुसैन रखा। हुसैन मेरा इस्तीफा है, मेहरबानी करके हिसाब किताब साफ करने के लिए एक लेटर दे दें। तमाम खर्च अदा कर दूं,
ये लीजिए।
ये क्या है?
फाइबर वाली गजा है, सब कुछ बॉइल्ड।
ये सब मुझे ही खाना है?
परेशान ना हो, हम साथ खाएंगे ताकि तुम्हें अकेले कोफ ना हो।
मैं सबसे बड़ा मकरूज मरियम का था।
मोहतरमा चीजरी, जिनके नाम आप घर करना चाहते हैं वो खुदाएंगी?
वो हमारी बीवी हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। अगर मुमकिन हो तो वो 2 माह बाद आएंगी। बाकी जरूरी दस्तखत भी उनसे ले लें और दस्तावेजात उनके हवाले कर दें।
अरे इश्क आशिकी, बर्थडे का तोहफा है? कोई बात नहीं।
मरियम ने तो शुरू से आखिर तक सब कुछ आपको बता दिया। अब आप रो क्यों रही हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि अगर चाहें तो अपनी मन्नत का दस्तरखान 2 महीने बाद अंजाम दें, ताकि उस वक्त तक मैं भी ठीक हो जाऊं, लेकिन फिर भी जैसा बेहतर समझें करें। कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जरूर। अच्छा, अम्मी बाबा घर पर हैं? काम है मुझे उनसे। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। ये बाबा हैं जो 3 साल से मुझे घर में नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा छोड़ें, अगर घर पर हों तो मैं थोड़ी देर के लिए आना चाहता हूं। जरूर, मैं वादा करता हूं झगड़ा नहीं होगा। आप तो वादा कर लिया, तो मैं जरा देर के लिए आपसे मिलने आ रहा हूं। शुक्रिया, फिलहाल खुदा हाफिज। पापा बहरहाल आपका शुक्रिया। अगर आप मदद न करते तो मैं कभी भी वो घर नहीं खरीद सकता था। अलबत्ता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अपने घर में नहीं आने देते, लेकिन मैं आपसे रंजीना नहीं हूं। जमाने का खेल है, मेरे पास भी अपने कामों की माकूल वजह है, जिसे समझना आपके लिए मुश्किल है। मुझे माफ कर दें, खुदा हाफिज़।
अब जा रहे हो तो पैसे भी लेते जाओ। मैंने ये पैसे एक मुसलमान नमाजी और आजादार को दिए थे, ना कि एक अस्तग़फिरुल्लाह। मैं बेनमाजी से पैसे नहीं लेता।
ये पैसे आपके हैं, मैं आपका मकरूज था, अब आप इन पैसों का जो चाहे करें, चाहे आप सदका दे दें।
मैं ऐसे पैसे सदके में भी नहीं देता जिसमें इमाम हुसैन का हक हो।
बाबा जान, ये पैसा बिल्कुल पाक है, उसमें किसी का हक नहीं है। और हाँ, वो नदर सही और सालिम बच्चे के लिए थी, न कि जिसका दाग माँ बाप को उठाना पड़े।
अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें एक सेहतमंद बच्चा दिया। तुम नेमत इलाही की हिफाजत करने के लायक नहीं थे। अल्लाह को तुमसे शिकवा होना चाहिए कि तुम जैसे इंसान को उसने अपनी नेमत दी, तुमने उसकी कदर नहीं की और बिलावजह उसे पामाल कर दिया। तुम अच्छे अमानतदार नहीं थे।
ऐसा नहीं है, बात यह है कि मैं अब तक ये नहीं समझ सका कि ये बला मेरे ऊपर क्यों आई। मैंने अल्लाह की राह में क्या गुनाह किया था कि मुझ पर ऐसा आजाब नाजिल हुआ?
अल्लाह के काम में भलाई है, बंदे का काम सब्र। अगर अल्लाह ने तुमसे बेटा ले लिया तो इसमें जरूर कोई खैर है। तुम खेल हार चुके हो और हार में दर्द होता है। अगर तुम खेल हार चुके हो तो गुर्राओ मत, मर्दानगी से हारो। तुम अपना गुनाह खुदा पर डालना चाहते हो ताकि अपना बोझ हल्का कर सको। सोने वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे जगाया नहीं जा सकता।
बाबा का दुलारा, अपने बाबा का लाडला।
शैतानी नहीं करो, सुकून से बैठो बेटा, सुकून से।
खेलने दो उसे, अपना खेल खेलने दो, खेलो बेटा। अम्मी की बात ही मत सुनो, मैं हूँ ना।
बहुत बुरे हो अली रजा, और अब ये बात है तो जाओ और बच्चों की मखसूस कुर्सी खरीद कर लाओ और गाड़ी में रख दो।
खरीदोगे?
बिल्कुल खरीदूंगी।
ठीक है,
बिल्कुल खरीदूंगी।
जरा गाड़ी तो देखूं। ओह ओह, क्या
आगे
है?
देखो।
ठीक है भाई।
बाबा आगे तो देखो।
ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है।
अली रजा नहीं करो, सुकून से बैठो बेटा, सुकून से बैठो।
देखो तो जरा गाड़ी का दरवाजा कितनी अच्छी तरह खुलता है, गाड़ी तो देखो।
अली रजा सामने देखो।
अच्छा, पप्पी नाम है, पप्पी नाम है।
अली रजा, अली रजा।
मरियम, ये रोने की जगह नहीं है, अगर रोना चाहती हो तो मजलिस में चली जाओ। मरियम,
तुमने ऐसी हरकत की है कि मुझे इमाम हुसैन की मजलिस में जाने में शर्म आती है, समझे तुम? समझे? 3 बरसों से न रो के तुम क्या साबित करना चाहते हो? किस पर गुस्सा कर रहे हो? खुदा पर? मैं हुसैन के जिंदा न होने पर तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूँ, लेकिन जानती हूँ कि तुम जो कर रहे हो उसे कुफरान नेमत कहते हैं, ना बच्चे से इश्क।
अरे छोड़ो, जब तुमसे कहता हूँ कि मेरी हालत तुम समझ नहीं सकती हो तो नहीं समझ सकती हो, क्योंकि मेरी निगाहों में हुसैन अब भी जिंदा है।
मैं हल्की हो गई। तुमने इन तीन वर्षों में सिर्फ खुद को देखा है। जब मुझे देखते हो तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे नहीं देख रहे हो। जब तुमसे बात करती हूँ तो समझ जाती हूँ कि मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। तुम्हारी तमाम हरकतों से दिमाग में एक चीज है, वो भी नफरत। हर चीज और हर शख्स से तुम मुतनफिर हो, तो खुद से। बहुत इंसान परामोश वाले नजरा, बहुत इंसान।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम, खैर मकदम अर्ज करता हूँ। क्या बात है, हम गरीबों को कैसे याद कर लिया?
कर्ज लौटाने आया हूँ हाजी साहब। ये लीजिए, आज ही की तारीख का है।
अभी तो इसे वापस करने में 2 महीने के बाद बाकी था, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? है
पैसा मौजूद था, सोचा जितनी जल्दी दे दूं बेहतर है।
बिल्कुल ठीक था, कर्ज चुकाना ही चाहिए। मेरा कर्ज तो दे दिया, मोहल्ला का कर्ज कब चुकाओगे?
अरे मैं तुम्हारी नजर की बात कर रहा हूँ। पहले तो मोहल्ले में देते थे तो कुछ हम तक भी पहुँच जाता था, लेकिन इन 1-2 बरसों से कुछ खबर नहीं। मालूम नहीं अपनी नजर कहाँ दे रहे हो। कुर्बान जाओ इस खुलूस पर, अलबत्त अगर थोड़ी रिया भी इसमें हो तो कोई बात नहीं है। नीचे वाले महल्ले में एक अंजुमन के बारे में सुना है कि उसकी माली हालत ज्यादा ठीक नहीं है। उनके पास तासुआ और आशुरा के तबर्रुक का इंतजाम नहीं है। तय ये पाया है कि तासुआ का इंतजाम मैं करूंगा और एक सखी की तलाश है जो आशुरा के तबर्रुक की जिम्मेदारी ले ले कि आज तुम आ गए।
आपके इर्द गिर्द इतने लायक लोग मौजूद हैं, मैं तो इन कामों के लायक नहीं।
कहते क्यों नहीं कि किसी और अंजुमन से वादा कर लिया है, इतना क्यों छुपा रहे हो? सच तो यह है कि बहुत से लोग हैं कि अगर मैं इशारा कर दूं तो 1-2 दिन क्या पूरे 10 दिन का खाना खिला दें, लेकिन मैं किसी से उस वक्त तक कुछ नहीं कहना चाहता जब तक उसकी दौलत के हलाल होने का मुझे यकीन न हो जाए। अगर तुमसे कह रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें भी पहचानता हूँ, तुम्हारे वालिद को भी।
मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा हाजी साहब।
हो, तुम अब भी दिल वाले हो, तुम किसी और के दीवाने हो गए हो। हम सब बदलते हैं लेकिन हमारी असल एक है।
तुम अल्लाह और मौला हुसैन की मोहब्बत अपने दिल से हरगिज बाहर नहीं निकाल सकते।
नसीहत न करें हाजी साहब।
मैं और नसीहत, मुझे तो खुद किसी ऐसे की तलाश है जो मुझे नसीहत करे। लेकिन तुमसे एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, अच्छी तरह सुनो। एक दिन एक शख्स बढ़ई के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने कमरे के लिए एक दरवाज़ा चाहिए। बढ़ई कहता है कि जाओ नाप लेकर आओ दरवाजे का। वो घर जाकर अपने हाथों से नाप लेता है और उसी तरह सड़क पर आता है और कहता जाता है कि देखो देखो मुझसे टकराओ मत, क्योंकि मेरा अंदाज़ा और नाप खराब हो जाएगा। बाज लोगों का भी यही हाल है, अल्लाह को अपने अंदाजे से नापते हैं और समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ उसी नाप के मुताबिक बंदों के साथ सलूक करता है। राह खुदा किसी नाप और अंदाजे की मोहताज नहीं है। तुम अपना नाप ले सकते हो लेकिन अल्लाह और उसके इरादे का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मौला इमाम हुसैन के जरिए से मसवा तबर्रुक है। इस पर जो काम हुआ है वो मेरा है। ये तुम्हारे लिए मैंने अलग रख दिया था ताकि जान लो कि मुझे तुम्हारा ख्याल है। चाहे नजर दो या ना दो, मेरे लिए पहले वाले वही अली रजा हो।
मैं पूरी तरह जेर हो चुका था, फरार का कोई रास्ता नहीं था। हत्ता दो दीवार मेरे लिए आईना बन गए थे, इसमें मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। हाजी मुस्तफा ने दिया है। मरियम, मैं इस साल रोजे आशूर को खाना खिलाना चाहता हूं।
तेरा माबूद। अली रजा, आओ हम उस साल की तरह फिर मन्नत माने और अल्लाह से ख्वाहिश बच्चा मांग लें।
तुम नेमतों की हिफाजत की इजाजत नहीं रखते थे, तुम अच्छे अमानतदार नहीं थे।
अस्सलाम वालेकुम अली रजा, कैसे हो पहलवान? मैंने कहा था ना किसी और ने तुम्हें अपना दीवाना बना रखा है। अजीब तबर्रुक भेजा था तुमने, सबने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की। मैंने अपनी जिंदगी में मजलिस इमाम हुसैन का तबर्रुक बहुत ज्यादा खाया है, लेकिन सच बात यह है कि तुम्हारा तबर्रुक कुछ और ही था। जानते हो कि मैं यूं ही कोई बात नहीं कहता, टूटे हुए दिल से पकाया था ना।
नहीं मालूम मम्मी, बस बहुत जल्दी यहां पहुंचिए।
रिकॉर्ड करते वक्त मेरी हालत एक ऐसे जनीन की है जो एक अरसे से अपनी मां के रहम में था और नई दुनिया में आने वाला है।
मुझे फिक्र है, मैं डर रहा हूं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं कि न मालूम कौन मेरी आखिरी सांस हो। मेरी पूरी जिंदगी मेरी निगाहों के सामने है, बचपना, नौजवानी, जवानी, एक बच्चे की मानिंद फिर पैदा हो रहा हूं। दर्दनाक लम्हा है। उम्मीद है कि इस अंधेरे के बाद रोशनी होगी। इंसान